ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर दो दिन की यात्रा पर कल रात इटली पहुंचे। भारत को सम्मेलन में आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं। प्रधानमंत्री यात्रा से अलग G7 देशों के नेताओं के साथ साथ आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। श्री मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी ने इटली रवाना होने से पहले कहा कि सरकार भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अजित डोभाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी। इन दोनों अधिकारियों को वरीयता में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नियुक्ति समिति ने अमित खरे और तरुण कपूर को भी प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इसके बाद दोनों सदनों में उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप NCRB आपराधिक विधि का संकलन जारी किया है। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। इस ऐप में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। ये ऑफलाइन भी काम करेगा। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। कुवैत में भीषण अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज विशेष उड़ान से स्वदेश लाए जाएंगे। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा कि ये विशेष उड़ान दिल्ली जाने से पहले आज सुबह कोच्चि में उतरेगी। मृतकों में सबसे अधिक 23 लोग केरल के, 7 तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3-3, ओडिशा के 2 और बिहार, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा हरियाणा से 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल कुवैत में 5 अस्पतालों का दौरा कर घायलों से बातचीत की। सभी 33 घायल प्रवासी भारतीय मरीज सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द छुट्टी दे दी जाएगी। क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के 2,00,000 छात्रों के प्रशिक्षण में मदद करेगी। ओरेकल और तमिलनाडु कौशल विकास निगम ने राज्य में छात्रों को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नान मुधलवन पहल के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ RKJ नमणी ने बताया कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में औसत तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दिव्या देशमुख ने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में फाइनल दौर में दिव्या ने बुल्गारिया की बिरोस्लावा क्रस्टेवा को हराया। श्रुति बोरा ने घुड़सवारी में 3-स्टार ग्रांड प्री जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। श्रुति ने स्लोवेनिया के लिपिका में FEI ड्रेसेज विश्व कप में 67.76 अंक हासिल किये। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।